मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 31 जुलाई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मेन सब्जेक्ट के रूप में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी शेल कंपनी को लेकर, जिसे हिंदी में कहा जाता है खोखा कंपनी। इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने का आधार आप सब जानते ही हैं कि फ्राइडे को जो हमारे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, उनके पद से अयोग्य करार दिया। और उसका कारण जो रहा है वो खोखा कंपनी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला रहा है। और भारत में भी जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो खोखा कंपनी है, ये काफी चर्चित रही है। तो हम इस पर थोड़ी सी बातें करेंगे जितना भी वक्त बच पाएगा। फ्रेंड्स, तो आइए अब मैं न्यूज पर आता हूं। और आज न्यूज में भी बहुत सी बातें बात करने को हैं। जनरली सोमवार को उतनी बातें होती नहीं हैं, लेकिन आज हैं। और उसका कारण यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की बात। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितनों ने मन की बात प्रधानमंत्री जी की सुनी है। और मैंने इससे पहले कई बार आप सबको सजेस्ट किया है कि कोशिश कीजिए कि आप मन की बात सुने, और अगर उस समय नहीं भी सुन पाते हैं तो बाद में आप सुन सकते हैं। और उसका कारण बहुत साफ है मित्रों, साफ यह है कि वो नरेंद्र मोदी जी के मन की बात नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री के मन की बात है। और मन की बात में उन्होंने इसी बात को एक दूसरे अंदाज में कहा कि 15 अगस्त को जब लाल किले से मैं बोलूंगा तो वो मेरी बात नहीं होगी, मैं नहीं बोलूंगा, बल्कि हिन्दुस्तान के 125 करोड़ लोगों की बात होगी, 125 करोड़ लोगों की आवाज होगी। मित्रों, अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो तो आप उसे प्लीज सुनिए। होता यह है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो देश के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलते हैं, देश की क्या दिशा होना चाहिए उस पर बोलते हैं, उपलब्धियों पर बोलते हैं, तो उनके बोलने का एक बहुत बड़ा वजन है, राइट? जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली मैं मेन्स की बात कर रहा हूं, तो अगर आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, मेरा तो इस फील्ड में बहुत ही लंबा अनुभव रहा है, तो और मैंने पाया है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं टॉपिक वहीं से निकलते हैं जहां से जिन विषयों पर, जिन टॉपिक्स पर पूरा देश विचार कर रहा है, पूरा देश चिंतित है या पूरा देश वैसा चाहता है, और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो मित्रों, मुझे लगता है कि इस रूप में आपको इसे लेना चाहिए। यदि आपने मन की बात सुनी हो तो देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। एक उन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य कहा, संकल्प से सिद्धि तक। मतलब उन्होंने अब जो 5 साल का वक्त बचा है, यानी कि 2017 से 2022, ये 5 साल का वक्त प्रधानमंत्री के अपने टर्म्स से जुड़ा हुआ नहीं है, कार्यकाल से जुड़ा हुआ नहीं है, इस 5 साल को उन्होंने कहा कि संकल्प से सिद्धि में कन्वर्ट करें। ये 5 साल क्यों? क्योंकि सन 2022 में हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो जो 75वीं वर्षगांठ होती है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है, 75, और 2022 को अभी आने में 5 साल बचे हैं। एक उन्होंने बड़ा अच्छा इसके समानांतर घटना की चर्चा की, और ये कि 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त की बात है, 8 अगस्त 9 अगस्त को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, और उसमें उन्होंने अपनी पूरी जो फिलॉसफी थी अभी तक फ्रीडम स्ट्रगल की, स्वतंत्रता आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यही सब उनके मेन हथियार थे आंदोलन करने के। 1942 में अचानक वो उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और वह करो या मरो, डू आर डाई। और 1942 के बाद हम देखते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने की संभावनाएं दिन पर दिन उज्जवल होती जाती है, और अंततः 47 में हमें आजादी मिल जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो 42 से जो 47 तक का पीरियड था, ये बेसिकली संकल्प से सिद्धि तक का पीरियड था। या संकल्प का क्या मतलब है? हमने फैसला किया, डिटरमाइन हो गए, हम संकल्प ले लिया कि नहीं, अब तो हम करेंगे ही, ये संकल्प है। और सिद्धि यानी कि उसकी पूर्ति हो जाना। आप सब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपने संकल्प लिया हुआ है, और जिस दिन आप हो जाएंगे तो उसकी सिद्धि हो जाएगी, वो संपूर्ण हो जाएगा, पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, यह है सिद्धि। तो बड़ा अच्छा उन्होंने अनुप्रास अलंकार के तहत शब्द का इस्तेमाल किया वाक्य का, संकल्प से सिद्धि तक, एक बहुत अच्छा फ्रेज है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। अब आप देखिए कि फिर उन्होंने जोड़ा कि अब ये होगा कैसे, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था, उन्होंने कहा कि अब कुछ चीजों के खिलाफ हम भी आंदोलन छेड़े कि तुम भारत छोड़ो। उसमें कुछ बड़े अच्छी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गरीबी भारत छोड़ो, हम गरीबी से मुक्ति पा जाएं। आतंकवाद भारत छोड़ो, आतंकवाद से हम मुक्ति पा जाएं। संप्रदायवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद से हम मुक्ति पा जाएं। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, करप्शन से हमें मुक्ति मिल जाए। और इसके लिए उन्होंने देश के संपूर्ण नागरिकों का आह्वान किया, ठीक उसी तरह से जैसे गांधी जी ने 1942 में देश के पूरे नागरिकों का आह्वान किया था कि अब अंग्रेजों से कहो कि भारत छोड़कर वो चले जाए। तो कुल मिलाकर के बड़ी अच्छी बातें थी, बड़े सिंपल सिंपल वाक्य होते हैं और थोड़ा सा वक्त होता है, मजा भी आता है ना, और हमें पता लग जाता है कि नहीं हमारे देश के कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और फिर हम सिविल सर्विस के लिए उसमें से अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल सकते हैं। मित्रों, उसी मन की बात में ही प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही थी। देखिए टॉपिक्स कहां से निकलते हैं। तो एक तो हमें ये चार पांच तरह के जो भारत छोड़ो हैं, ये हमारे देश की मुख्य समस्याएं हो गई जिससे हमको निजात पाना है, और ये सिविल सर्विस के आपके टॉपिक्स हैं कि इन पर आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन सुपरफिशियल तैयारी नहीं जो आप स्टेट सिविल सर्विस के लिए करते हैं या स्कूल और कॉलेजेस के निबंध के लिए करते हैं, है ना, बड़े तार्किक तैयारी होनी चाहिए, बहुत ही साइंटिफिक तैयारी होनी चाहिए, एक गहरी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, हिन्दुस्तान के सर्वोच्च पदों पर आसीन होने जा रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने एक बात और कही कि जीएसटी को लागू हुए एक महीना हो गया है और उसके बड़े अच्छे परिणाम सामने आए हैं, मतलब इससे इकोनॉमिक में बड़े पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी ठीक है, हम उसका इवेल्युएशन उस तरीके से नहीं कर सकते। अखबारों में भी कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं आ रही हैं। कुछ बातें आपने पढ़ी हैं कि जो इनकम टैक्स में जो रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या बढ़ गई है, जो ट्रैफिक पे जो बड़े बड़े जो नाके होते थे, जो जिनको हम टोल कहते हैं, वहां जो ट्रकें होते, सामान भर भर के ट्रकों की लाइन लगी रहती है, कम से कम वो ट्रक की लाइन लगनी बंद हो गई क्योंकि अब तो सब एक ही हो गया। ठीक इसी तरह से सड़कों पर जो भीड़ हो जाती थी क्योंकि अब सर्राटे के साथ गाड़ियां चल रही है, वो होने लगा, ट्रेवल टाइम कम हो गया। तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं और इस पर आगे भी डेफिनेटली आपको पढ़ने को मिलता रहेगा। उन्होंने एक बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया हम कि जो अर्थशास्त्र के पंडित हैं, ये पंडित शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए होता यह कि जब आप अपने मिट्टी से जुड़े रहते हैं ना, अपने लोगों को जानते हैं, उनकी चेतना को समझते हैं, तब ऐसे शब्द आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं शब्द। पंडित का मतलब क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वाला हम चले जाते हैं कि पंडित का मतलब एक जाति विशेष, जबकि भारतीय शास्त्रों में पंडित का मतलब ही है विद्वान। किसी विषय का पंडित का मतलब उस विषय का विद्वान, इसीलिए कहते हैं वो बड़ा पांडित्यपूर्ण बातें करता है, पांडित्यपूर्ण, पंडित के गुणों से भरी हुई बातें करता है, मतलब वो बड़ी विद्वत्तापूर्ण बातें करता है। तो ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने एक जो बात कही और मुझे लगता है कि इस पर आप सबको विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और वो ये है कि ये जो जीएसटी है ये एक सामाजिक सुधार भी है, एक सोशल रिफॉर्म है। अब आप देखें कि जीएसटी का सीधे सीधे संबंध अर्थशास्त्र से है और वो कह रहे कि एक सामाजिक सुधार है। इस पर मित्रों आप लोग सोचिएगा, निबंध के लिए बड़ा अच्छा विषय है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है अपने आप केवल अर्थ सुधार ही, आर्थिक सुधार ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक सुधार भी है। इस पर आप लोग निबंध लिखिए, मैं वीकली क्वेश्चंस के तहत नहीं देने जा रहा हूं, आप लोग अपनी तरफ से इस पर चर्चा कीजिए। मैं अपनी क्लास स्टूडेंट्स को यहां याद दिलाना चाहूंगा कि वो याद करें, एक लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था और वो था मार्क्स के सिद्धांत के ऊपर, और मार्क्स का एक सिद्धांत मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर और सुप्रास्ट्रक्चर की बात बताई थी और उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, बल्कि वो क्लास बड़ी मजेदार थी, आप लोग हंस हंस करके लोटपोट हो रहे थे, याद कीजिए, जिसमें मैं फिल्मों के बारे में, कला के बारे में और जो खान पान और आज के जो युवा हैं उन सब की जो विचार भावनाएं परंपराएं किस तरीके से परिवर्तित हो रही हैं और क्यों परिवर्तित हो रही हैं, उसका जो बेस मैंने बताया था वो था इकोनॉमी। मैंने ये आपको मार्क्स के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की थी कि किसी भी देश का जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कला हो, चाहे राजनीति हो, ये सब के सब वहां की अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर टिके होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही है वो कहीं न कहीं उसी बात को इंडिकेट कर रही है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की है और उस अर्थव्यवस्था के सुधार के कारण एक सामाजिक सुधार भी होने लगा है, क्योंकि जो समाज है वो इसी अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है। आपको मित्रों केवल उसी फिलॉसफी को जो मार्क्स का सिद्धांत रहा है, मार्क्स का जो दर्शन रहा है, उसको यहां अप्लाई करना है, और अगर आप उसे अप्लाई करके इस पर विचार करेंगे तो आपके जो निबंध का जो वजन है, जो टेस्ट है कह लीजिए, जो स्वाद है, फ्लेवर है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस को यही बात चाहिए कि आप कैसे दूसरों से कुछ डिफरेंट बात करते हैं, नहीं तो रूटीन की बात तो हर कोई करता ही है। दोस्तों इसके बाद जो लास्ट जो खबर थी वो थी आपके टेरर फंडिंग को लेकर के। आप देख रहे हैं कि अब इस पर थोड़ी सी सरकार कड़ाई कर रही है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से जो धन आ रहा है उसकी काफी चेकिंग हो रही है। आपने एक न्यूज ये भी सुनी कि किस तरीके से हमारे जो इंडियन कोस्टल गार्ड हैं, हमारे जो तट रक्षक जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने 3500 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा है। 3500 करोड़ रुपए, 3500 किलो हेरोइन पकड़ी है ड्रग्स। अब आप देखेंगे कि सीधे ये जो आतंकवाद है, जो हथियारों की तस्करी है और ये जो ड्रग्स हैं, ये जो आतंकवाद कहते हैं ना कि इस्लाम को फैलाना है और फैलाने को वो करना है या जिहाद है, वो अपनी जगह होगा जितना भी होगा, लेकिन इन सब के साथ में ये तस्करी धन का मामला बहुत जबरदस्त रूप से जुड़ा हुआ है। इस नेक्सस को समझना होगा और इस नेक्सस को पकड़ना भी होगा। तो ये भी आपने न्यूज में सुना है। तो एक घटना है जो घटित हुई है जिसका इस्तेमाल आप अपने लेटेस्ट किसी भी आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। तो दोस्तों न्यूज के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं जो हमारा मुख्य विषय है उस पर, शेल कंपनी पर। फ्रेंड्स आपको मालूम है कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ एक जजमेंट दिया और उन्हें प्रधानमंत्री पद के अयोग्य ठहराते हुए वहां से बर्खास्त तो नहीं किया, उन्होंने फिर त्याग पत्र दिया है और उन्हें अब जीवन भर राजनीति में आने से प्रतिबंधित कर दिया है। पहली बात तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिए कि एक तो मामला 2016 में आया था, एक साल में सारा का सारा फैसला हो गया। दूसरा यह कि उस फैसले के साथ उन्होंने अयोग्यता शब्द लगा दिया कि आप इसके अयोग्य हैं, और तीसरा यह किया कि जिंदगी भर के लिए प्रतिबंध लगा दिया। हमारे यहां तो शायद 6 साल का है कि अगर किसी के खिलाफ कोई इस तरह का अपराध हो जाता है तो 6 साल तक वो लड़ने के अयोग्य होगा। खैर मित्रों उन पर आरोप क्या था? देखिए आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि आप अपना ब्लैक मनी, अपनी ब्लैक मनी, अपना काला धन विदेशों में भेजते हैं, राइट? मतलब बहुत ही सिंपल सा है, विदेशों से भेजते हैं, अवैध तरीके से भेजते हैं, यानी कि आप बैंक के माध्यम से भेजते हैं। देखिए अगर आपके पास काला धन है तो फिर बैंक में तो आप रख ही नहीं सकते, बैंक में तो आप केवल व्हाइट मनी रखेंगे जो वैध मुद्रा होगा, और वैध मुद्रा वही होगी जिसका आपने टैक्स दिया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तो काले धन की समस्या आप जानते ही हैं कि डिमोनेटाइजेशन भी आया था, वो इसी समस्या से निपटने के लिए आया था। तो दोस्तों आप धन को अपना अवैध तरीके से वहां भेज देते हैं, कंपनी में भेज देते हैं, और इसके बाद फिर वही कंपनी उस पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करती है और यहां तक कि वो उसी पैसे को भारत भेज देती है। अब ये जो कंपनी बनती है जो विदेशों में, इसे ही हम कहते हैं शेल कंपनी। शेल का मतलब होता है, देखिए हिंदी में तो ये शब्द चला है खोखा, अब ये खोखा कंपनी के नाम से जाना जाने लगा है। पहले इसके लिए शब्द एक साल पहले तक जो सुनने में मिलता था वो था छद्म कंपनी। बेसिकली ये है क्या, देखिए दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिसे हम टैक्स हेवन कंट्रीज कहते हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज का मतलब है कि वहां आप अपना अपनी कंपनी खोल लीजिए या वहां के बैंक में अपना पैसा जमा करा दीजिए, वो कंपनी बैंक नहीं पूछेगा कि आपका ये पैसा कहां से आया। जैसे अगर भारत में आप पैसा किसी बैंक में जमा कराने जाएं तो वो पूछेगा कि भाई ये, अगर उसको महसूस होता है कि भाई ये पैसा आपका कहां से आया, और ये होना भी चाहिए क्योंकि वैध मुद्रा यही होती है, तो वो नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहां से आया, राइट? और इसके बाद आप उस पैसे को वैध कर देगा और फिर जब आप कमाई करेंगे तो वो कोई टैक्स भी नहीं लेगा। इसको कहते हैं टैक्स हेवन, मतलब जो टैक्स की चोरी करना चाहते हैं या यूं कह लीजिए टैक्स बचाना चाहते हैं अगर अच्छी भाषा में कहें तो, उनके लिए वो स्वर्ग स्थल है, जिसमें मॉरिशस जैसे देशों के नाम भी है वहां पर। ये इस तरह का सिस्टम है। और एक बात और है कि ये जो बैंक होते हैं या वहां जो कंपनी होगी, उसकी शर्त यह होती है कि उनके यहां जिन्होंने पैसे जमा किए हुए हैं वो उसका नाम नहीं बताएंगे। ये उनके लॉ में है कि हम नाम नहीं बताएंगे, नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब हुआ ये कि इसी तरह का मामला नवाज शरीफ जी के साथ भी था। उन्होंने शेल कंपनी बनाई, ये शेल कंपनी है, बेसिकली शेल कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी ही होती है, उस देश में रजिस्टर्ड होती है लेकिन इसकी कोई एक्टिविटीज नहीं होती। इसकी एक्टिविटीज बस यही है कि विदेशों से पैसा आ रहा है और उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर रही है, चाहे उस देश में करे, दूसरे देशों में करे, या जहां से पैसा आ रहा है उसी को वापस कर दे। यानी कि भारत का पैसा विदेश में शेल कंपनी में काले धन के रूप में गया और फिर वो पैसा सफेद धन होकर के भारत में वापस आ गया और सरकार को कोई टैक्स नहीं मिला। ये इसका सबसे बड़ा संकट है, इसे ही हम कहते हैं भ्रष्टाचार। क्योंकि जो भ्रष्टाचार के द्वारा जो कमाया गया पैसा होगा, अब आप उसको कितना रखेंगे, कहां रखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसीलिए इसको कहा गया खोखा कंपनी, छद्म कंपनी। ये बेसिकली कोई काम नहीं कर रही है, यानी कि कोई फैक्ट्री लगाई हुई है या कुछ और एक्टिविटीज हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही है, नथिंग, कुछ नहीं कर रही है। ये खोखली है, बस ये काम कर रही है। शेल का मतलब समझते हैं, जैसे सीप होती है ना, सीप ऊपर से उठा हुआ है, नीचे से उठा हुआ है और बीच में उसके कुछ नहीं, होल है, होलो है, वो खाली है, है ना, पता नहीं मोती अब उसमें रहता है या नहीं रहता है, लेकिन खाली है। तो ये भी कंपनी इसी तरह से, तो इनको शेल कंपनी कहा गया। तो नवाज शरीफ, उनके भाई, दो भाई, सॉरी उनके बेटे और उनकी बेटी ने इसी तरह से अपने यहां का पैसा भेजा और मनी लॉन्ड्रिंग में वो लिप्त पाए गए। हुआ ये कि वहां की एक कंपनी थी, विदेश की एक कंपनी है, उसका नाम, एक फर्म है, कानूनी फर्म है, मोसाक फोनसेका, चलिए सब नाम से आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसके कुछ पेपर लीक हो गए। एक एनजीओ है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जर्नलिस्ट का एक एनजीओ है, उन एनजीओ ने किया क्या कि इस कंपनी के का जो सर्वर है उसको हैक कर लिया, और जब सर्वर हैक कर लिया तो वो नाम सब सामने आ गए, अदरवाइज ये कंपनी नाम बताते नहीं है। अब वो जब नाम सामने आ गए तो उसमें नवाज शरीफ जी का भी नाम था, भारत के भी बहुत से लोगों का नाम है जिसमें पॉलिटिशियन है, फिल्म स्टार है, फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके भी नाम है। फिर इन जर्नलिस्ट ने किया क्या कि जिनके नाम आए थे उनका इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो यही है कि वो अब खोजी पत्रकारिता जिसे आप कहते हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और उसमें से सही पाए गए लोगों को। तो उसमें नवाज शरीफ जी को सही पाया गया, फिर बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच दल बिठाया, जांच दल ने फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर नवाज शरीफ जी को अपना पद छोड़ना पड़ा। तो मित्रों, ये संक्षिप्त में मैंने आपको इस घटना के बारे में बताया है। और वैसे भी शेल कंपनी के बारे में मुझे लगता है कि कुछ महीने पहले हम लोगों ने बहुत विस्तार से बातें की थी। तो मित्रों, मेन सब्जेक्ट के रूप में बस इतना ही। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेजेस पर। जहां तक प्रेस क्लिपिंग्स का सवाल है, आज मैं सिर्फ एक प्रेस क्लिपिंग्स आपको इंडिया टुडे का एडिटोरियल प्रोवाइड कर रहा हूं, बाकी आज आप बिल्कुल फ्री हैं। कोई ऐसी प्रेस क्लिपिंग्स नहीं है जो मैं आपको पढ़ने के लिए प्रोवाइड कर सकूं, तो आप थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आता हूं अंतिम चरण पर और यह है अपने नौजवान साथियों का वेलकम करने का चरण। और अब मैं स्वागत करता हूं अपने उन पांच नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अमरनाथ झा, आप पटना बिहार से हैं, स्वाति मुदाल रोकड़े, आप प्रभाणी महाराष्ट्र से हैं, शिपाली चौरसिया, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, शिवम कुमार नवादा बिहार से हैं और अंशुल कुमार सोन, आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।